Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Take it. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jan Vallabha Giri Varadhari Jai Radha Yashoda Nandana Braj Janaranjana Yashoda Yashoda Nandana Braj Janaranjana Yashoda Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Jaya Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jan Vallabha Giri Varadhari Jaya Radha Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jan Vallabha Giri Varadhari Jai Radha Madhava Kunj Bihari Gopi Jan Vallabha Giri Varadhari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हरे 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 कृष्णा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्र जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शच्ये श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीवीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर शच्ये श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 गोपीनाथ राम राम हरे 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 कृष्णा। आशय आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। यात्रा में बहुत से लोगों का स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो जाता है। राजवीर है यहाँ कहीं? नहीं, हाँ है, ठीक है। यात्रा में आने का उद्देश्य भगवान से निकटता है, जैसा कि प्रभुपाद ने समझाया, और यह निकटता प्राप्त होती है उन स्थानों पर जाकर जहाँ भगवान ने लीलाएं की, वहाँ के भक्तों से मिलकर, वहाँ की कथा सुनकर और साथ ही साथ उन कथाओं से जो उपदेश हमें प्राप्त होते हैं उनको ग्रहण करके जीवन में अपना के अपने जीवन को बदल कर कृष्ण भक्ति में प्रगति करने से तीर्थ यात्रा का लाभ होता है। तो अगर हम किसी स्थान में जाते हैं, कोई यात्राओं में जाते हैं, तो केवल अगर स्थानों को देखकर आ गए, वापस जाकर हम लोगों को बताएं हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, फोटो खींचें, वीडियो निकालें, है ना, और जाकर वो दिखाएं लोगों को कि देखो कैसे हम स्विमिंग कर रहे थे या कैसे समुद्र में हम आनंद ले रहे हैं। अच्छा है, करना चाहिए। हमने देखा समुद्र के पास लोग बड़ी अच्छी अच्छी पोज में फोटो खिंचवा रहे थे, है ना, कोई हाथ ऊपर करके, कोई टेढ़ा करके, कोई ताकि वहां जाके दिखा सकें। नोटिस बोर्ड पे फोटो लगे स्नान करते हुए इत्यादि जो भी। तो ये सच्चा है, ये सब भी करना चाहिए, क्योंकि पवित्र स्थानों में स्नान करके, पवित्र स्थानों में केवल जाकर वहाँ की शक्ति हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती है, इसलिए आवश्यक है। लेकिन केवल स्थानों में जाकर स्नान करके और दर्शन करके आना ये परिपूर्ण नहीं है। ये अच्छा है लेकिन परिपूर्ण नहीं है। तो परिपूर्णता कैसे प्राप्त होती है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक समय प्रवचन कर रहे थे राधा कुंड में, और उनके शिष्य राधा कुंड के आसपास भ्रमण करने चले गए। प्रभुपाद जी बैठे हुए सुन रहे थे। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि ये धाम में आने का उद्देश्य नहीं है, जब प्रवचन हो, जब श्रवण हो, क्योंकि कृष्ण कथा का श्रवण ये वैसे तो शक्तिशाली है ही, लेकिन जब वही श्रवण धाम में किया जाता है, लीला स्थली में किया जाता है, तो और ज़्यादा शक्ति उसमें आ जाती है, जिससे हमारा हृदय बहुत जल्दी शुद्ध होता है। यही कारण है हम धाम में आते हैं, अन्यथा क्या आवश्यकता है। हम जहाँ हैं, जिस मंदिर में हैं, वो मंदिर भी वैकुंठ है। प्रभुपाद जी ने कहा उनका हर एक मंदिर वैकुंठ है। और क्यों है वैकुंठ? क्योंकि वैकुंठ का भाव क्या है? जो लोग वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठवासी या मठवासी, तो उनका भाव क्या है? वे किस भाव में एक दूसरे से आचरण करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते थे कि मंदिर वैकुंठ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबका उद्देश्य कृष्ण की सेवा है। अगर जिस स्थान में कृष्ण केंद्र में है वो स्थान आध्यात्मिक जगत है, तो फिर हमें इन धामों में आने की क्या आवश्यकता है? हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए रथ पर बड़े आतुर हैं, लेकिन जगन्नाथ जी तो मंदिरों में भी हैं, बेलगाम में मंदिर में है, कारवार में मंदिर में है, जगन्नाथ जी तो कई मंदिरों में हैं। तो क्या वो जगन्नाथ नहीं हैं? क्या यही मूल जगन्नाथ हैं? वो केवल प्रतिमा है? क्या ऐसा भाव है हमारा? तो फिर क्या लाभ है उनको रोज भोग अर्पण करने का? क्या लाभ है उनके सामने कीर्तन करने का अगर वो केवल प्रतिमा है, मूर्ति है? तो इसीलिए जो मंदिरों में विग्रह हैं, विशेष करके प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित मंदिरों में, और हम ये क्यों जोर देकर कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित मंदिरों में, क्योंकि वहां पर विशेषतः विग्रहों की सेवा प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित, मतलब हम ये नहीं कह रहे केवल जो प्रभुपाद ने उस समय स्थापित की, अभी भी जो भी मंदिर प्रभुपाद जी के आंदोलन के हैं, क्योंकि वहां पर सेवा बड़े प्रमाणिक तौर से शास्त्रों के आधार पर की जाती है। आज सुबह हम लोग कथा सुन रहे थे गोपीनाथ जी की, माधवेंद्र पुरी की। माधवेंद्र पुरी ने भगवान की खीर जो भगवान को भोग लगने जा रही थी उसको स्वाद लेने की इच्छा की, लेकिन वो इच्छा उन्होंने अपने लिए नहीं की थी, वो नहीं चखना चाहते थे। जैसे हम लोग सुबह गए थे तो है ना, हमारी इच्छा ये नहीं थी कि हम चख लें और जाकर राधा गोकुलानंद जी को ऐसे ही खीर बनाएंगे, थी किसी की इच्छा नहीं उस समय, था बड़ी टेस्टी है जल्दी खा लेते हैं, माधवेंद्र पुरी ने खाई थी हम भी खा लेते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी का भाव क्या था, उनका भाव था कि वो केवल अपने गोपाल जी के लिए वैसी खीर बनाने चाहते, तो उसमें क्या गलती थी। अगर हम कृष्ण के लिए कुछ मांगते हैं, कृष्ण के लिए कुछ करते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं है। और फिर उनको ग्लानी क्यों हुई, क्यों उन्होंने ये सोचा कि मैंने गलत कर दिया, उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा था। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं, तो वो शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है, सही है ना। अगर कोई भी कार्य केवल कृष्ण के लिए किया जाए वो शुद्ध भक्ति है। अर्जुन ने हत्याएं की, शुद्ध भक्ति है। वो जो अर्जुन कर रहा था, तीर चला रहा था, शुद्ध भक्ति है। इसका प्रमाण भागवत में है, क्यों वो शुद्ध भक्ति है, उद्धव देते हैं उसका प्रमाण। तथैव चान्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखार विंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामं पार्थस्य पूता पद्मा पुरस्य। और कहते हैं कि उस युद्ध में जब पार्थ तीर चला रहा था, कृष्ण रथ चला रहे थे, अर्जुन तीर चला रहा था, तो तथैव चान्य नरलोक वीरा, बहुत सारे अन्य वीर थे वहां नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम। तो जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी, वो मर रहे थे, तो वो कृष्ण के मुखारविंद को देख रहे थे। तो प्रश्न आता है कि ऐसे लोग जो अधर्म का साथ दे रहे थे, ऐसे लोग जो तीर चला रहे थे भक्तों पर, अर्जुन इत्यादि पर, ऐसे लोग जो कृष्ण पर तीर चला रहे थे, भगवान का भक्तों का विरोध कर रहे थे, या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम। मृत्यु के समय ऐसा कैसे हुआ कि उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण के दर्शन मृत्यु के समय होना साधारण बात नहीं है, तो फिर कैसे हुआ। पार्थस्य पूतः पद्मा पुरस्य, क्योंकि पार्थ अर्जुन शुद्ध भक्ति का पालन कर रहा था, इसलिए उसके द्वारा छोड़े गए तीर पार्थस्य पूतः पद्मा पुरस्य जब हृदय में लग रहे थे, तो हृदय को शुद्ध कर रहे थे। तो इसीलिए भक्तों के द्वारा किया गया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य शुद्ध भक्ति है। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने जो किया वो तो कोई गलती नहीं थी, फिर उन्होंने क्यों ग्लानी हुई, क्यों दूर चले गए। इसका कारण था शास्त्रों का पालन। भले ही वो भक्ति है, भले ही वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध था। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। हरि की भक्ति है उत्पात करती है, क्यों, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम बिना। तो क्योंकि शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिए देखिए, अगर शास्त्रों की बातें भक्त करते हैं, आचार्य करते हैं, हम उनका पालन करते हैं, अनुगमन करते हैं, उनको समर्पण करते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों के विरोधी बातें भगवान भी करते हैं, हम उनको स्वीकार नहीं करते। बुद्ध अवतार, हम लोग बुद्ध अवतार की शिक्षाओं को स्वीकार क्यों नहीं करते, शास्त्रों के विरुद्ध, उन्होंने शास्त्रों को नकार दिया, इसलिए शिक्षाओं को ग्रहण नहीं। बुद्ध को हम अवतार मानते हैं भगवान का, लेकिन शिक्षाएं, तो बड़ी विचित्र बात है ना। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है कि भक्त बुद्ध को नहीं मानते, क्योंकि बहुत विचित्र बात है कि आप भगवान को मानते हो, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को नहीं मानते, तो क्या बात है, कैसे आप भक्त हो, सही है ना। कोई आपसे पूछ सकता है, जो
बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वे शून्यवाद का पालन करते हैं। कुछ नहीं, सब पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं होगा, बस ये अभी शरीर है, खत्म हो जाएगा, फिनिश, कोई आत्मा नहीं, कुछ नहीं। तो क्या भक्तों को ये सब मानना चाहिए? आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि जो भी भगवान कहे वो हमें करना चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। जो भी भगवान कहे वो हमें करना चाहिए। अच्छा, बाकी लोग क्या कहते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग कहते हैं जो भगवान कहे वो हमें नहीं करना चाहिए? दो ही बातें हो सकती है ना, या तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मतलब बाकी सब कह रहे कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, राइट? मानो नहीं करना चाहिए, बताइए आप लोग। भगवान जो, अच्छा एक सीधा प्रश्न, भगवान जो कहें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाथ ऊपर करने में क्यों शर्मा रहे हैं? कितने लोग बोलते जो भगवान बोले वो करना चाहिए? ओके, हाँ,
भगवान जो बोला है करो करके, वो करना चाहिए, नहीं करना।
हाँ, जो भगवान कहें कि करो वो करना है, जो नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि शास्त्रों का पालन नहीं करना। क्या करना चाहिए? अवतार हैं कि नहीं भगवान? भगवान के अवतार हैं बुद्ध के? नहीं है कि ऐसे किसी ने अवतार बना दिया? तो फिर हम करें या ना करें, बताइए? शास्त्रों का पालन नहीं करें? हाँ, तीनों प्रमाणों को लेकर चलना चाहिए। अच्छा, फिर हाँ, गुरु साधु शास्त्र, तो शास्त्र आ गए, उन्होंने तो शास्त्रों को नकार दिया, तो भगवान को नकार दें क्या, बताइए? तो दुविधा हो गई ना। एक तरफ हमारी भक्ति का मार्ग ये है कि जो भगवान ने कहा, क्योंकि जो भगवान कहते हैं वो धर्म है, यही है ना, सही है कि नहीं? ऐसा कुछ चीज है जो भगवान कहते हैं जो धर्म नहीं है? जो भगवान कहते हैं वो धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। तो फिर भगवान ने बुद्ध अवतार में आकर कहा कि शास्त्रों को नकार दो, हम उसे क्यों नहीं स्वीकार करते, वो धर्म क्यों नहीं है? सिचुएशन के हिसाब से, बहुत अच्छा, मतलब धर्म को अपनी सुविधा के हिसाब से स्वीकारना चाहिए, भगवान के हिसाब से नहीं, राइट? यानी कहा गया 16 माला जप करना है, सिचुएशन है तो ठीक है, नहीं है, यही है ना, यही बात कह रहे हैं आप लोग? धर्म तो यही आपने कहा कि सिचुएशन के हिसाब से, अब समय नहीं मिला तो नहीं करना है, जब समय मिल जाएगा जिस दिन उस दिन 16 माला करना, जिस दिन नहीं तो 10 माला, नहीं तो 2 माला, नहीं तो नहीं करना, सिचुएशन के हिसाब। धर्म सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलता, सिचुएशन को धर्म के हिसाब से बदलना चाहिए। धर्म कभी नहीं बदलता, धर्म के सिद्धांत कभी नहीं बदलते, इसलिए कभी नहीं सोचना कि सिचुएशन के हिसाब से हम धर्म को एडजस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो अधिकार नहीं है धर्म को बदलने का। धर्म के सिद्धांत हमने नहीं बनाए हैं, जिसने बनाए हैं वो बदल सकता, लेकिन हमने नहीं बनाए, इसलिए हम बदल नहीं सकते। तो धर्म के सिद्धांत कभी नहीं बदले जाते, ये जान लीजिए, चाहे कोई स्थिति क्यों ना हो, स्थिति के अनुसार धर्म उसी सिद्धांत को कैसे पालन करना है वो बताया जाता है, लेकिन धर्म नहीं बदलता, राइट? और क्या बात, फिर कैसे माने अब ये बुद्ध अवतार की बात है? उस समय परिस्थिति अलग थी, ओके, वेरी गुड, उस समय परिस्थिति अलग थी इसलिए भगवान ने कहा, लेकिन भगवान ने उसमें ये नहीं कहा कि इतने साल बाद इसको पालन नहीं करना। भगवान ने कहा, यह सही है, उत्तर एकदम सही है कि परिस्थिति के अनुसार भगवान को प्रचार करना पड़ा। शून्यवाद का प्रचार क्यों किया? बौद्ध धर्म शून्यवाद, अब भगवान खुद आकर कहे कि मैं हूं ही नहीं, पहले कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, तो ये क्यों किया? और उसको हम नकार देते हैं, हम लोग स्वीकार नहीं करते। आप लोगों से कितने लोग जानते शून्यवाद क्या होता? ओके, शून्यवाद एक साधारण शब्दों में उदाहरण देते हैं कि जैसे बिल्डिंग, ये घर है, ये यहाँ पे बनी हुई है, इसके पहले जमीन थी, जिस दिन ये गिर जाएगी तब भी जमीन रहेगी। ऐसे अभी हमें शरीर मिला है थोड़े समय, बाद में कुछ नहीं रहेगा, शून्य, सब कुछ जीरो। ये साधारण, बाकी उसके बहुत सारे। तो फिर कैसे हम लोग माने, बुद्ध को माने या नहीं माने? आप लोग मानते हैं कि बुद्ध भगवान के अवतार हैं? ओके, तो बुद्ध को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। फिर क्यों नहीं मानते? फिर इसके हिसाब से तो सब शून्य है, कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पालन करना, क्या आवश्यकता है धाम में? हम धाम में क्यों आए? शास्त्र में लिखा है, इसीलिए क्या आवश्यकता? दुविधा हो गई है तो एकदम।
कलयुग था इसलिए भगवान भगवान ने बुद्ध अवतार लिया।
ओके,
वेदनेश बाद पे जो बुद्ध अवतार लिया उसके बाद शंकराचार्य है।
हाँ,
उसको चैतन्य महाप्रभु आके पूरा उसको समझा दिया।
वो तो सही,
इस तरह से भगवान धीरे 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 डेवलपमेंट चले गए।
बहुत अच्छा है, यस, करेक्ट आंसर है। लेकिन जिस समय शास्त्रों का पालन हो रहा था उसको गलत पालन हो रहा था, इसीलिए उन्होंने शास्त्रों को मना कर दिया। लेकिन किया तो भगवान ने, पॉइंट ये है। अगर वो चाहते तो किसी और तरह से करा देते, किसी आचार्य से करवा देते, शंकराचार्य जी से उन्होंने करवाया, तो फिर खुद आकर क्यों कहा? क्योंकि जो वो खुद कहते, वो शंकराचार्य ने जो कहा वो शास्त्र नहीं है। चाहिए, शंकराचार्य ने शास्त्र पर गलत टिप्पणी की, बस। शंकराचार्य जी ने जो कहा वो शास्त्र नहीं है, हम उसको शास्त्र नहीं मानते कि शंकराचार्य मुख पद्म चित्ते को, वो नहीं, कृष्ण के मुख से जो आया वो शास्त्र। तो फिर बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? जो आपने कहा वो सही है कि वो धीरे धीरे डेवलपमेंट चाहते थे, लेकिन गलत चीज का प्रचार क्यों किया? शून्यवाद का प्रचार क्यों किया बुद्ध ने, एक भगवान के अवतार होकर? खैर, इसको बहुत ज्यादा नहीं लेके जाते, आपको समझा देते हैं। बड़ा सरल है इसका उत्तर। कोई जानते हैं इसका उत्तर?
लोग गलत काम कर रहे थे शास्त्रों के आधार।
हाँ, सही, दो लोग गलत काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने निंदा किया।
भगवान के आने के समय बुद्ध अवतार का भी समय था।
भगवान के आने के समय बुद्ध अवतार का समय था। कौन से भगवान आए थे उस समय?
भगवान बुद्ध का आने का, हर एक अवतार अपने टाइम पे था, तो भगवान बुद्ध का भी।
तो उससे क्या, एनीवे, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं जाना चाहिए, हम लोग दूसरी बात कर रहे थे, कहीं चले गए। बात यह है कि भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार नहीं किया, ये गलत है। भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार नहीं किया, इस चीज़ को समझ लीजिए। दो बुद्ध हुए, एक विष्णु तत्व जो भगवान के अवतार हैं, और दूसरे जीव जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। सुनते ना, सिद्धार्थ थे, उनको अचानक राजा के पुत्र, ये वो अलग है। तो दो बुद्ध हुए, भगवान के जो अवतार हुए उन्होंने शून्यवाद का प्रचार नहीं किया, शून्यवाद का प्रचार ही दूसरे बुद्ध ने किया। तो इसलिए भगवान कभी गलत प्रचार नहीं करते हैं, केवल उनके, जैसे दो अवतार कहाँ हुए कोई जानते हैं? बुद्ध का अवतार कहाँ हुआ? गया में भगवान बुद्ध का। और जो दूसरे हुए सिद्धार्थ लुम्बिनी, कहाँ है वो? नेपाल में। तो दो जगह पर हुआ, और इसका वर्णन कई जगहों पर है कि दो अवतार हुए भगवान के। तो इसीलिए भ्रांति फैली है कि भगवान बुद्ध ने शून्यवाद का प्रचार किया, भगवान ने नहीं किया। ये जो जीव बुद्ध थे, जो बाद में जाकर उनको बोधि सत्व या वहाँ गया में गए, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, पेड़ के नीचे बैठकर राजा के पुत्र थे, अचानक एक दिन सब छोड़ दिया, उन्होंने इसका प्रचार किया। तो इसीलिए ये जान लीजिए कि जो भगवान ने कहा वो सही, भगवान ने कभी शून्यवाद का प्रचार नहीं किया, ठीक है। एनीवे, हम लोग इस पर क्यों आए, क्या चर्चा चल रही थी हमारी, सारी चर्चा बुद्ध अवतार पर क्यों आ गई? जगन्नाथ जो मंदिर में है और ये जो जगन्नाथ है वो एक ही है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अलग अलग हैं। तो फिर भी हम लोग धाम में क्यों आते हैं? अगर सभी जगन्नाथ जी वहाँ पर एक जैसे हैं तो हम धाम में क्यों आते हैं? क्या वहाँ बैठकर जप नहीं कर सकते? हम लोग धाम में आते हैं क्योंकि धाम की शक्ति होती है, और एक थोड़ा बहुत हम अपने दैनिक कार्यों से अलग निकलकर केवल पूर्ण रूप से भगवान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने अपने स्थानों में रहेंगे तो ऐसे अगर आपको कहें कि 1:30 बजे बैठकर कथा होगी, कोई मंदिर में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती है, नहीं आओगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, या पता नहीं क्या कुछ रूल होगा ऐसा, हाँ तो आपको आना पड़ता है। तो धाम में जाने का उद्देश्य यही है कि हम, इसीलिए भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं। मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है भक्तों को, लेकिन वो जाना चाहते हैं। क्यों? ताकि बिना किसी कष्ट के, बिना किसी कठिनाई के भगवान की सेवा कर सकें, बस यही उद्देश्य है। तो जब हम धाम में आते हैं तो हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भक्तों से वहाँ के विषय, धाम का विषय। तुम लोग माधवेंद्रपुरी की चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने ग्लानी उनको इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का पालन, शास्त्रों की अवज्ञा की। शास्त्र का निर्देश है कि जब तक भगवान को भोग न लगे हमें किसी को देखना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, भगवान ने चुराया। सुबह महाराज प्रश्न कर रहे थे कि भगवान अपनी चीज कोई कैसे चुरा सकता है, ठीक है, सब कुछ भगवान का है तो चुराया कैसे, चोर क्यों हुए, इसका किसके पास उत्तर है? महाराज तो चले गए प्रश्न देकर, किसके पास उत्तर है? कि जब उनकी चीज, अपनी चीज कोई चुराता नहीं है ना। जैसे हमने, अगर ये चीज हमारी है हमने उठा ली तो कोई हमें कहेगा चोर चोर चोर, हमारी चीज है, कोई नहीं कहेगा। फिर भगवान चोर क्यों कहलाए? क्योंकि भोग भगवान की संपत्ति है, प्रसाद भक्तों की संपत्ति है, राइट? जब भगवान को भोग लगने जा रहा, भगवान ने पहले नहीं चुराया पहले चुराया होता तो चोर नहीं कहलाते। जब भगवान को भोग लगने जा रहा है वो भगवान की संपत्ति, इसीलिए हमें देखना भी नहीं चाहिए। नियम है कि जिस समय भगवान को भोग लगने जाता है उसको ढक कर ले जाते, पुजारी के अलावा किसी को देखना नहीं चाहिए, वो भगवान की संपत्ति। लेकिन जब भगवान ने उसमें अपनी कृपा दे दी, कृपा प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा, तो जब वो कृपा दे दी तो ये प्रसाद जो है वो अब कृष्ण की संपत्ति नहीं है, राइट? प्रसाद कृष्ण की संपत्ति नहीं है, प्रसाद भक्तों की संपत्ति है। तो इसीलिए उसको उन्होंने चुरा लिया, सही है ना, इसीलिए चोर कहलाए, क्योंकि वो संपत्ति उनकी नहीं थी, वो भक्तों की संपत्ति थी। सारे जगत में एक ही चीज है जो भक्तों की संपत्ति है, और वो है भक्ति। क्योंकि कृष्ण किसकी भक्ति करेंगे? कृष्ण किसी की भक्ति कर सकते हैं? भक्ति कौन करता है? तो भक्ति किसके पास होती है? भक्तों के पास। इसीलिए भक्ति भक्तों की संपत्ति है, तो उसको भगवान ने चुराया, जो भक्तों को दे दिया था अपनी कृपा उसको चुराया, इसीलिए चोर कहलाए। वृंदावन में माखन चोरी करते हैं, अच्छा प्रश्न ये है कि जो वृंदावन में भगवान माखन चोर करते हैं उनको भी माखन चोर कहा जाता है, तो वो तो भक्तों की संपत्ति नहीं है, वो तो कृष्ण की संपत्ति है। भगवान जब अपने शुद्ध भक्तों के साथ लीला करते हैं, जैसे उन्होंने वृंदावन में किया या आध्यात्मिक जगत में करते हैं उनकी नित्य लीलाएं में, तो वहाँ जिन चीज़ों को वो करते हैं, जिन चीज़ों में आनंद लेते हैं, वो उनकी लीला का भाग है, जिसे नित्य लीला का भाग कहते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि वो लड़ रहे हैं, वो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, कालिया को बचाने, अग्नि से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये लीला के भाग होते हैं। क्योंकि लीला के लिए भगवान आस्वादन लीला का करने के लिए कई, जैसे गिरधारी कहलाने के लिए गोवर्धन उठा लेते हैं, माखन चोर कहलाने के लिए माखन चोर आते हैं, तो ये लीला के भाग है। जो नित्य लीला, भगवान की लीलाओं में नित्य लीला, और तीन प्रकार की भगवान की लीलाएं होती हैं, नैमित्तिक और सृष्टि लीला। तो इसीलिए नित्य लीला और नैमित्तिक, नैमित्तिक मतलब जब इस जगत में आके करते हैं, जैसे असुरों का वध वगैरह, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, नित्य लीला में नहीं होता। तो उस लीला में अलग अलग लीलाएं आनंद के लिए वो करते हैं, जिससे लोग उन्हें किसी नाम से पुकारें। क्योंकि ऐसा कहा गया कि कृष्ण के नामों में एक प्रमुख नाम होते हैं, जैसे प्राइमरी या पहले प्रमुख नाम कहलाते हैं, फिर दूसरे गौण नाम होते हैं। जैसे सृष्टि से संबंधित जो नाम है वो कृष्ण के, वो कृष्ण को आनंद नहीं देते। लीलाओं से संबंधित इनको प्रमुख नाम कहा गया, तो कभी लीलाओं के भाग के लिए इन चीज़ों को वो करते हैं। तो इस दृष्टि से उसको भी देख, यहाँ भी उस दृष्टि से देख सकते हैं कि केवल एक लीला मात्र से। तो ऐसे यहाँ पर दूसरे भगवान ने चोरी किया, और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे जब माधवेंद्रपुरी ने इन शास्त्रों के पालन को किया या फिर भगवान की सेवा के लिए, मूल बात इस सारी लीला की ये है कि हमें अपना सर्वस्व, जैसे माधवेंद्रपुरी ने सर्वस्व कृष्ण के लिए किया, वृद्धावस्था में भी वो इतना दूर चल कर आए, वहाँ से यहाँ तक गोपाल जी के लिए केवल लेना। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है कि हमें जितनी हमारी क्षमता है उससे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो, जैसे प्रभुपाद जी ने तो 108 मंदिर बनाए, मेरी क्या क्षमता, मैं तो आधा भी नहीं बना सकता। जितनी क्षमता है उससे बना, हम भले प्रभुपाद नहीं है, हमारे अंदर 108 मंदिर बनाने की क्षमता नहीं है, एक ईंट लगाने की क्षमता हो वो लगानी चाहिए, ये भक्ति है। तो कई बार उदाहरण देते हैं ना गिलहरी का और हनुमान जी का, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े पर्वत डाल रहे हैं, गिलहरी कुछ नहीं उठा सकती, गई रेत में, ऐसे अपने शरीर को डाला, रेत के कण लग गए, जाकर समुद्र में डाल रही है। तो समुद्र में रेत के कण क्या है, लेकिन भगवान के लिए दोनों समान है, क्योंकि सेवा। तो इसीलिए हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ जब हम लोग आए हैं गोपीनाथ जी के पास, तो हम सोच रहे थे कि गोपीनाथ, ये जो भजन है भद्र सिंह प्रभु ने गाया था, बहुत सुंदर भजन, तो आज गोपीनाथ जी के चरणों में बैठे हैं, तो इस निवेदन को हम लोग करें, उसको समझें कि क्या ये निवेदन है। आप सबको भूख लग रही है पक्का? कितने लोग अभी प्रसाद लेना चाहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। जब ऐसे पूछा जाता है ना, जिसको लेना भी है वो भी नहीं कह सकता क्योंकि अगर एक दो भक्त उठाएंगे दूसरे प्रसाद खाने, इसीलिए हम लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं सबको साथ। ये बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, कल्याण कल्पतरु से ये भजन है। तो गोपीनाथ जी से मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ जी को हम कह रहे हैं कि हमारा निवेदन सुनिए आप। क्या निवेदन है? विषय दुर्जन सदा कामे रत, किछु न ही मोर गुण। एक भक्त को निर्भय होना चाहिए। निर्भय जानते हैं आप लोग, निडर, निर्भय। एक भक्त को निर्भय होना चाहिए, किस लिए? झगड़ा करने के लिए नहीं, तलवार चलाने के लिए नहीं, दूसरों को काटने के लिए नहीं, अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए। हम सब में ये बहुत बड़ी कमी है, हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बस लोगों को मेरी अच्छी बात पता चले, कौन सी मेरे अंदर कमी है, क्या मेरे अंदर दोष है उसको मैं छुपा दूं, मेरे अंदर वासनाएं हैं किसी को नहीं बताऊं, मेरे अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं हैं किसी को नहीं, मुझसे जप नहीं होता नहीं बताऊं, जब चर्चा हो आपका जप कैसे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई ध्यान नहीं, 108 नामों में से 20 नाम भी सुन नहीं पाते, क्या अच्छा जप है। तो एक भक्त को निर्भय होना चाहिए। दरअसल वैष्णवों में ये तीन गुण होना बहुत आवश्यक है, निर्भयता, निस्वार्थ भावना और नम्रता। ये तीन गुण वैष्णवों के लिए बहुत अति आवश्यक है, निर्भय तो होना ही चाहिए। तो ये यहाँ पर जो हम सुन रहे, विषय दुर्जन सदा कामेरत किछु नाहीं मोर गुण, ये निर्भयता है कि हम स्वीकार करें कि हमारे अंदर क्या है, और ये भक्ति की प्रथम सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है। जहां हम स्वीकार करें, जब तक हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, जब तक हम अपने रोग को स्वीकार नहीं करते, हम उसका इलाज ढूंढने का प्रयास नहीं करते। अगर आप रोगी हैं तो सबसे पहले आपको पता होना, आप स्वीकार कीजिए कि हाँ मेरे पेट में दर्द है, हाँ मुझे तकलीफ है। आप जाके किसी को कहेंगे तब आपका इलाज होगा। मान लीजिए आपका सर दर्द है, आपका पेट दर्द है, आप किसी को कहें ही नहीं, तो कैसे इलाज होगा? कोई इलाज कर पाएगा? जस्ट आपको देखकर, आप बैठे और आपको देखकर बोलेगा जाओ थोड़ा क्रोसिन खा कर आओ। तो सबसे पहले अगर हमें ठीक होना है तो हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए, हमारी कमियां क्या क्या हैं, राइट? हम सब में कमी है ना। आप में से शायद, माफ कीजिए, मतलब हो सकता है आप में से ऐसे भी भक्त हो जिनमें कोई कमी नहीं हो, लेकिन हम में तो बहुत हैं, तो हम स्वीकार कर सकते हैं। आप सब अलग बात है, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक आध कमी तो होगी, है ना? किसी में एक कमी है कुछ भक्ति की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भूल जाइए, भक्ति की दृष्टि से कोई कमियां हैं आप में कि नहीं है? हैं? अच्छा एक काम करेंगे, एक एक कमी जल्दी जल्दी बताएंगे अपने अंदर की, दूसरे की नहीं। हाँ ऐसे मत कहिएगा ये ना हमेशा ऐसा करता है, ये ना ऐसा करता है, प्रभु जी ये जप में सोता है जी, ये ऐसा हमारे अंदर, ये देखिए प्रथम लाइन ही यही है, किच्छु नाही मोरा गुण, कोई गुण नहीं है, विषय दुर्जन सदा कामे रहती। जो मेरा मन है, जो मैं अहंकार से, ये विषय दुर्जन इतना बुरा आदमी है, ये अपने आप को कह रहे हैं, दूसरे को नहीं है, ये आप सबको करना चाहिए। कोई करता है आप लोग? जब सुबह सुबह अपने आप को शीशे में देखते हो क्या बोलते हो? पापी, दुष्ट, नीच, कोई कहता है? कोई नहीं ना? तो मुझसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, ये कहना चाहिए, ये कह रहे, देखो ये शीशा दिखा रहे अपने आप को, विषय दुर्जन पापी दुष्ट नीच सदा कामेरत, केवल काम वासना भरी हुई है हृदय में, किच्छु नाही मोरा। तो एक एक भक्त जल्दी जल्दी बताएंगे, ज्यादा समय नहीं, पवित्र नित्यानंद प्रभु से, क्योंकि पवित्र है इसीलिए उनसे शुरू करेंगे। एक कमी केवल बोलनी है, हमें पता आपके पास लिस्ट है लंबी, हमें लिस्ट नहीं चाहिए, एक केवल। यस पवित्र नित्यानंद प्रभु शुरू करें फटाफट, भक्ति की दृष्टि से एक कमी केवल बताए, अगर हो तो, नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल मत बताइए। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान नहीं आता जब में, ध्यान नहीं,
बुरे विचार आते हैं
जब करते समय, बुरे विचार वैसे नहीं आते? वैसे भी आते, मन में बुरे विचार आते हैं
जब में, ठीक से
ध्यान नहीं, जब सुनाई नहीं देता। देखिए कुमार प्रभु के अंदर कुछ नहीं कर, सेवा नहीं कर पा रहा हूँ मिशन में,
सब कमी
है। कुछ एक तो बता, मुझे मालूम है लिस्ट है लंबा, एक तो बता। नींद आ जाती है भगवान की कथा सुन के, नाम में रुचि नहीं, सेवा में रुचि नहीं, कपड़ा भी नहीं, क्या हुआ आपका? आपके कपड़े कहाँ गए? हाँ
भक्ति संबंधित कार्यों को करने के लिए ज्यादा उत्साह नहीं,
उत्साह ही नहीं है, बाकी कार्यों को करने के लिए है। यस ये सही है, बाकी कार्य बोलिए सब रेडी है। आप भी अगर कहा जाए कि चलो उधर नदी है, स्नान करना है, खेलना है, सब बाहर ही नहीं आएंगे, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो घंटा चिल्लाते रहो प्रभु जी निकलो निकलो, नहीं। लेकिन कहा जाए कथा श्रवण करनी है, अंदर नहीं जाएंगे सुनने के लिए, फिर बुलाना पड़ता प्रभु जी बैठो बैठो। यस मनो आलस किस चीज में? सुबह उठाई नहीं जाता। जप में क्या कमी है? जप कमी है, जप में कमी है, जप कम, जप होता ही नहीं जाए, बहुत अच्छा। प्रवचन के समय कभी कभी नींद आती, ज्यादातर आंख खुली रहती है आपकी, महान आदमी हो तो। यस प्रभु एक थोड़ा पीछे, हाँ कुटे भक्ति में दे, अच्छा एरोगेंस, बहुत अहंकार है, मुझे लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, मुझसे अच्छा कोई गाता ही नहीं, मुझसे अच्छा कोई बोलता ही नहीं, मुझसे अच्छा कोई कुकिंग नहीं करता, मुझसे अच्छा कोई टेंपल हॉल क्लीनिंग नहीं करता है, व्हाटएवर व्हाटएवर, बहुत अहंकार। यस, भक्तों के प्रति किस तरह का अपराध? हाँ, दोष ढूंढते हैं, हाँ देखते हैं कि है तो भक्त लेकिन कितना खीर खा रहा है, इतना थोड़ा खाना चाहिए, कैसा भक्त है ये। राइट, दोष देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु में भी देखा था लगने की सन्यासी होके इतना खाता है, चीटियां दिखाई दे रही है, स्वीट खाता है बहुत ज्यादा। यस गोविंद प्रभु, अहंकार ईगो, बहुत घमंड है अपने अंदर, ब्रह्मचारी हूँ, सैफरन पहना है इतने सालों से, सर भी शेव किया है, पता है क्या, ग्रेट। एक्चुअली सर शेव करने के बाद ईगो चला जाना चाहिए कि कुछ है नहीं हमारे, सुनता ज्यादा हो जाता, ज्यादा हो जाता है। राइट, यस, जब करते समय नींद आती है, और कुछ कमी नहीं है अंदर, विश्वास नहीं, किसके ऊपर, भगवान पर, भगवान की भक्ति पर, भक्तों पर, ध्यान, बहुत अच्छा। देखो ये प्रामाणिकता, ये सही है। हम लोग कहते हैं कि मायावादी मतलब जो अपने आप को भगवान मानता है, राइट, उस दृष्टि में हम सब मायावादी हैं, क्योंकि हम सब अपने आप को भगवान मानते हैं, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं बहुत अच्छा। विश्वास नहीं है कि भगवान है, या भक्ति से कुछ हो सकता है, या एक दिन भगवान मिलेंगे, बिल्कुल विश्वास नहीं। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, आप लोग इतना जप करते हैं, इतना भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं जीवन भर, अगर मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है ही नहीं, तो क्या होगा? बेकार सारा, जय हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सब बेकार, है ही नहीं कृष्ण, कृष्ण नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, अगर हमें ऐसा पता भी चला तो हमारा क्या नुकसान है, हमने क्या किया, जीवन भर हमने नृत्य किया, प्रसाद खाया, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग, तो हमारा क्या नुकसान है अगर नहीं भी है कृष्ण। लेकिन आप लोग जो ये सोच कर कि कृष्ण नहीं है, इतना पाप कर रहे हो, आप सोचो मृत्यु के बाद आपको पता चला कि कृष्ण है तो आपका क्या होगा। हमारी कोई चिंता नहीं, हमें कुछ नहीं होने वाला, हम तो खा पी के मस्त है, तो लेकिन ये विश्वास नहीं है। और हम लोगों को सब में कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमको पूरा विश्वास नहीं है भक्ति पर, कृष्ण पर। इसीलिए श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कहिले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है, सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं कृष्ण भक्ति से, ये विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं मुझे ठीक है, भक्ति मतलब साल में एक यात्रा जाना, नहीं तो रविवार को मंदिर चले जाना, और क्या है, जीवन दे देना, ये पागल लोग हैं, ये सर मुंडा कर घूमते रहते हैं, राइट, जीवन दे देना, क्या जरूरत है, क्या होने वाला है इससे। हमें याद है पिछली बार जब हम लोग आए थे, ट्रेन में जा रहे थे, तो एक व्यक्ति बैठे थे ट्रेन में, तो उन्होंने देखा, उस समय भी करीब 100 लड़के थे हम लोगों के साथ, तो उन्होंने देखा कि सब लड़के घूम रहे हैं, जपा कर रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, तो उसने हम लोगों से पूछा, या पता नहीं आप में से कौन थे हमारे साथ, किसी को याद है, उसने पूछा ये सब आपके साथ है, इन सबको आपने हरे कृष्णा बना दिया। सारे कृष्णा बना दिया मतलब क्या, मतलब उनका क्या कहना था कि इन सबको बेकार कर दिया आपने, जीवन बर्बाद कर दिया इनका, केवल ये लोग हरे कृष्ण, तो केवल ये लोग हरे कृष्णा करते हैं, इनका नहीं नहीं ये घर में रहते हैं, ये लोग काम भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये सब करना बेकार की बात है, ये क्या, कि श्रद्धा नहीं है कि कृष्ण भक्ति करने से, और भक्ति में भी आने के बाद हमें ये पूर्ण श्रद्धा नहीं है कि केवल भक्ति करने से, कृष्ण की पूजा इत्यादि करने से सब कुछ आएगा। कभी कभी हमारे बहुत बड़े बड़े उत्सव होते हैं, कुंभ मेला है, तो उसमें कहा जाता है प्रसाद बांटो, तो चर्चा होती है, नहीं नहीं ज्यादा नहीं बांटेंगे, थोड़ा बांटेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, घी नहीं देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखते हैं, बहुत सुंदर पत्र है, हम कई बार उसको पढ़कर लोगों को सुनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मंदिर में जो भी आए उसको प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि ये राधा रानी का विभाग है, मंदिर किचन राधा रानी चलाती हैं। प्रभुपाद लिखते हैं विश्वास नहीं है आप लोगों को। तो हमें विश्वास नहीं है कि कृष्ण सब करेंगे, जहां भी जिनको विश्वास है वहां कृष्ण देते हैं। प्रभुपाद जी को विश्वास था, क्या नहीं दिया प्रभुपाद को कृष्ण ने, क्या था उनके पास। आज सुबह हम सुन रहे थे माधवेंद्रपुरी ने कुछ ही घंटों में बड़ा उत्सव कर दिया, क्या था उनके पास, श्रद्धा। तो ये श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर। किसने कहा था, विश्वास नहीं। हाँ, आगे कहाँ जा रहे थे हम, इधर से किधर से। ओके नितेश बोल दिया, क्या बोला, जब नहीं होता आपने पहले बोल दिया, ये हो गया। अच्छा सॉरी, हम लोग उल्टा जा रहे हैं। फिर किसका है नेक्स्ट, कौन है? हाँ मन, मन नहीं लगता, कहाँ लगता है मन, मन कहाँ लगता। ठीक है, सबको पता है, आप लोग आप जानते हैं मन कहाँ लगता है, इसलिए उनको बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी सब जगह लगता है, इंडिया मैच जीती या नहीं जीती, यहां बैठे, अगर अभी इस समय पता नहीं कुछ चल रहा है क्या, वर्ल्ड कप या कुछ अगर चल रहा होगा तो आप यहां बैठे हैं, लेकिन ध्यान होगा क्या हुआ, जीती या नहीं जीती, मन उधर है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए, उसने क्या कहा, खाना खाया कि नहीं खाया प्राइम मिनिस्टर ने। हमारा मन सब जगह लगता है, फिल्मों में, क्रिकेट में, बाकी सब चीज़ों में, पैसा कमाने में, केवल एक जगह नहीं लगता, कृष्ण में। क्योंकि हम लोग सब बहुत बड़े वैरागी हैं, राइट, सब बड़े वैरागी हैं। क्योंकि जो वैरागी होते हैं छोटे मोटे, वो लोग कोई घर छोड़ देता है, कोई धन छोड़ देता है, कोई पद छोड़ देता है, हमने तो कृष्ण को छोड़ दिया, सबसे बड़े वैरागी हैं, राइट। इससे बड़ा और क्या छोड़ सकते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट, जब मैं ध्यान नहीं लगता, दोष ढूंढने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जहां देखते हैं वो लगता है आदमी ऐसा करता है, मैंने तो पढ़ा था ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तो सिखाया था ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्र में ऐसा लिखा था, मैं ऐसा करता हूँ। हम लोग दूसरों को अपने तरीके से देखना चाहते हैं, आत्मवत मन्यते जगत। मैं ऐसा करता हूँ, सबको ऐसा करना चाहिए, अरे आप गलत हो, सब क्यों गलत करेंगे। तो दोष ढूंढने की प्रवृत्ति, और दोष हम लोग क्यों ढूंढते हैं लोगों में, इसलिए नहीं कि लोगों में दोष है, इसलिए कि हमारे अंदर दोष देखने की प्रवृत्ति है, इसलिए दोष दिखाई देते हैं। सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, वेरी नाइस। हर समय आनंद लेने की इच्छा होती रहती है, राइट, है ना आप सबको कि नहीं है, बिल्कुल नहीं, सारे वैरागी हैं, महामंडलेश्वर इत्यादि यहाँ बैठे हैं सारे। आप जानते हैं महामंडलेश्वर क्या होता है, वृंदावन में जाइए तो वहाँ सारे बाबा ताबा महामंडलेश्वर ये वो नाम लिखे रहते हैं, 108 1008 पता नहीं कितना। तो बहुत भोग करने की इच्छा, ये तो हम सबके अंदर है, ये हमारे दोष हैं, है ना, सबके अंदर है, कहीं ना कहीं हो जाता। अभी हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, अब समझे कहीं और होते, कुछ अलग वातावरण होता, अचानक कोई फिल्म की हीरोइन आ जाए तो क्या होगा, आप लोग कोई प्रवचन सुनाई देगा, हाँ उत्साह आ जाएगा, भक्ति में उत्साह नहीं, कृष्ण खड़े कोई उत्साह नहीं देखने के लिए। निश्चित रथ यात्रा में भी हम लोग जो सब जगन्नाथ 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 कर रहे थे, पता चलते यहाँ पर वो कौन, हाँ नहीं कोई हीरोइन का नाम बताओ, नहीं पता, अभी कोई नहीं बताएगा, हाँ मैं बता देता, ऐश्वर्या राय, चलो कोई चिंता नहीं, पता चले ऐश्वर्या राय खड़ी है उधर, क्या ध्यान जाएगा जगन्नाथ जी पे। हम लोग करेंगे कीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण, उधर से आवाज आई, इधर देखो, हाँ हरे कृष्ण कुछ नहीं। आपको पता है ना, बेलगाम में आए थे एक बार, कुछ साल पहले बेलगाम में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था सरकार की तरफ से, तो उसमें ऐश्वर्या राय को बुलाया गया था, राइट, याद है आप लोगों को। तो जो चीफ मिनिस्टर था वो भी साथ में फोटो खिंचाने के लिए बार बार फोटो खींच रहे, तो सबको इच्छा है भोग करने की, बस। आज भी हम लोग भक्त हैं, बैरागी हैं, सैफरन धारण है, लेकिन जहां अवसर मिलेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राइट, या फिर अच्छा खाने की, सारी इच्छाएं धीरे धीरे, वेरी गुड, भोग की, यस। और कोई पीछे, रोजी आपकी कोई इच्छा है, या अहंकार आता है सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, वेरी गुड, जब में कंटिन्यूटी नहीं है, ओके, जब में नींद नहीं लगती, हाँ नींद आती है, हेलो बोल रहे, जब में नींद नहीं लगती, हेलो बहुत अच्छी बात है, कौन महान व्यक्ति है, जब में मन नहीं लगता, दोनों तरफ उदासीनता, वाह दोनों तरफ उदासीनता, प्रसन्नता है ही नहीं जीवन में, जय हो, तीन बार हरि बोल कहना चाहिए, हरि बोल। तो फिर क्या, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं? हाँ हरि नाम, तो फिर आध्यात्मिक में हो गई ना रुचि, फिर उदासीनता कहाँ है, आनंद नहीं आ रहा। हाँ ये कह सकते हैं कि भक्ति में आए, एक भजन सुना, केवल आनंद कंद, चलो हम लोग भी जाते हैं, उधर गए तो पता चला झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ कुछ है ही नहीं आनंद, इतने दिन हो गए कहाँ है आनंद, राइट। हमारा कष्ट ये है कि हम भक्ति में जिस आनंद को ढूंढने आते हैं वो भौतिक आनंद है, और इसीलिए वो मिलता नहीं है, और इसीलिए दुख होता है। दरअसल अगर हम दुख को ढूंढने के लिए आए, एक सरल उदाहरण देते हैं, हम किसी जगह पे किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जाएं, वो चीज़ मिल जाए तो हम सुखी होंगे या दुखी? सुखी। वो चीज़ नहीं मिले, अगर हम भक्ति में सुख को ढूंढने आते हैं, सुख नहीं मिलता तो हम सुखी होंगे या दुखी? दुखी। अगर हम भक्ति में दुख ढूंढने आते हैं, दुख ढूंढने आते हैं, वो मिल गया तो क्या होगा, दुखी होंगे या सुखी? अरे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, दुखी होंगे सुखी? सुखी। और अगर दुख नहीं मिला तो क्या होंगे, दुखी। दुख नहीं मिला तो सुखी होंगे ना, सरल है। तो इसीलिए दोनों तरफ से सुख हो जाएगा अगर हम दुख को ढूंढने आए। इसमें हम लोग आते सुख, लेकिन वो भौतिक सुख को ढूंढने आते हैं, सोचते हैं कि बहुत कष्ट है जीवन में, जॉब नहीं मिल रही, घर पे झगड़ा हो रहा है, पत्नी रोज गाली दे रही है, बच्चों के लिए फिर फीस नहीं, चलो हरे राम करते हैं, राइट, इसीलिए सुख नहीं मिलता। तो हमें आना चाहिए दुख को ढूंढने, मतलब इस भौतिक जगत के सुख के परे, हमें इस भौतिक जगत का सुख नहीं चाहिए, तब हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। यस प्रभु। प्रसाद बनाने की इच्छा नहीं होती, खाने की होती है। किचन की सेवा करने की, लेकिन जबरदस्ती किचन में भेजा जाता है आपको, किसने भेजा, कौन है डिपार्टमेंट? मतलब सेवा करना चाहते हैं लेकिन शारीरिक कारणों से सेवा नहीं कर पाते, तो फिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन और करने की इच्छा है, बहुत अच्छा। मन बहुत चंचल है, कहाँ पर है अभी, इधर है कि कहीं और है, पक्का निश्चित कुछ और नहीं सोच रहे, बहुत, फिर चंचल कहाँ है, मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भी कहा ना, कौन सा श्लोक है वो, चंचला ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़म, बहुत बलवान है, मन को वश में करना बड़ा कठिन है, फिर भी प्रयास करना चाहिए। एंगर एंड इग्नोरेंस, बहुत क्रोध आ जाता है और अज्ञान है। कहा नेक्स्ट है हाँ जी, कंसंट्रेट क्या होता है, नहीं होता, नहीं होता, हाँ ये अच्छा। एक बार दीक्षा का उत्सव हो रहा था, दीक्षा के उत्सव में भक्तों को प्रतिज्ञा लेनी होती है, आके वचन देना होता है, मैं चार नियमों का पालन करूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा और जुआ नहीं खेलूंगा, स्त्री संग नहीं, अवैध संग नहीं करूंगा, नशा पान नहीं करूंगा। तो वो आए भक्त, आए वचन लेना चाहिए, चार नियमों का पालन करूंगा, मांसाहार अवैध संग, वो रट्टा मार के आए थे, रट्टा जानते हो आप लोग, ना आने के पहले सिखाया जाता है, कई भक्त जो नहीं है उनको बोलो वापस बोलो वापस बोलो, तो मार के आया था। तो आते ही उन्होंने शुरू कर दिया, चार नियमों का पालन करूंगा, मांसाहार अवैध संग, जुआ जुआ खेलना और नशापान। महाराज बैठे तो बोले क्या करोगे या नहीं करोगे? वो तो बोलो, चारों बोल दिया करोगे या नहीं, तो हाँ नहीं करना, तो इसलिए भी बोल रहे हैं। यस नेक्स्ट बताइए प्रभु जी, किसमें? हाँ भक्ति में ना, बाकी जगह लगता है ना, ध्यान नहीं लगता। और उसके आगे कौन है नेक्स्ट, दिखाई नहीं दे रहे। यस प्रभु जी, वृंदावन प्रभु भक्ति में दृढ़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यस, बाकी चीजों में दृढ़ता है, भक्ति से दूर जाने में दृढ़ता है। हमने प्रण ले लिया है कुछ, कृष्ण कुछ भी कर ले, भक्तों को भेज दें, शास्त्रों को भेज दें, धाम में ले जाए, कुछ भी कर ले कृष्ण, भक्ति नहीं करूंगा, ये दृढ़ता है हमारी, है ना। कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया, भक्तों को भेजते हैं, आचार्यों को भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हम लोग बड़े ढीठ हैं। बहुत अच्छा। यस, तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, भगवद गीता में कहां कहां तत्व शब्द आया, प्रभुपाद जी वही प्रवचन में कह देते हैं, कृष्ण को समझना है तो तत्वतः। बहुत सुंदर वो प्रवचन है, बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण यहां कहते हैं तत्वतः, फिर दूसरा श्लोक कोट करते हैं यहां कहते हैं तत्वतः, फिर तीसरा श्लोक कोट करते हैं यहां कहते हैं तत्वतः। कृष्ण को तत्वतः जानना चाहिए, इसलिए बहुत आवश्यक है तत्व ज्ञान, क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार पर रस बढ़ता है। ये गलत धारणा है लोगों में कि भक्ति करना है तो रस होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, बस झूमो कीर्तन करो, ये कोई तत्ववत्व की आवश्यकता नहीं है, भगवद गीता बेकार है, ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी रस नहीं है भक्ति में। हमें तो बस कृष्ण हमारे साथ कीर्तन करते हैं रात को, कोई चिंता नहीं है, तो ये गलत है। तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी भक्ति ज्ञान जनित होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कृष्ण का कौन है कृष्ण। देखिए हम लोग कहते हैं कि गोपियों को तो कोई ज्ञान नहीं है, क्या गोपियां जानती हैं क्या कौन है कृष्ण, महान सृष्टि की रचना करते हैं, तो गोपियां तो सर, फिर वो तो श्रेष्ठ भक्त हैं, उनको क्या तत्व ज्ञान है। गोपियों को तत्व ज्ञान है या नहीं है, कैसे पता, क्या वो रोज भागवत प्रवचन होता है वहां पर, डेली बैठती हैं गोपियां, प्रवचन चलता है उनकी प्रार्थनाओं से, गोपी गीत जो उन्होंने ऐसे ही गाया, सारा तत्व ज्ञान तो उसी में है, है ना। कौन सा है पहला गोपी गीत, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो ये सारे तत्व ज्ञान तो उसी में दे रहे हैं ना, तो ये सब गोपियों को भी ज्ञान है, तो ऐसा नहीं कि उनका जो भक्ति है ज्ञान के विह। कुंती महारानी इतनी महान भक्त हैं, उनकी प्रार्थनाएं देखिए, सारा तत्व ज्ञान उसमें, तो इसलिए तत्व की आवश्यकता है। बहुत अच्छा, और कहाँ में आगे कहाँ पहुँचे हम लोग। यस माधव, हर किसी में दोष दिखाई देता है, अभी भी सोच रहे कितनी देर तक बोलते रहेंगे, बोला था आधा घंटा बोलेंगे, 45 मिनट्स हो गया, अभी भी लगे हुए हैं दोष देखने, राइट है ना। नहीं ये नहीं है, ये दोष देखने की, या गुरु के प्रति समर्पण नहीं होता है। भक्ति में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा समर्पण होना चाहिए उस भक्त के प्रति जो हमें मार्गदर्शन दिखला रहा, मार्गदर्शन कर रहा। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं ये तो बता रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ प्रभुपाद की सुनूंगा, मैं तो सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सुनूंगा। नहीं, हमारे लिए जो भक्त हमें मार्गदर्शन दे रहा है वही गुरु है, और अगर उसको समर्पण किया हमने तो निश्चित हमारी प्रगति है। भक्ति में पहले गुरुदास बनना है, कृष्णदास बनने का प्रयास मत कीजिए, आप बन नहीं सकते, क्योंकि कृष्णदास बना नहीं जाता, राइट। कृष्णदास बना नहीं जाता, कृष्णदास चुने जाते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, हाँ अब ये शुद्ध इसको बना, लेकिन बनना है तो गुरुदास बनना चाहिए, राइट। मतलब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ये भक्ति का प्रथम सीढ़ी है। रूप गोस्वामी बताते हैं, अभी आप लोग ध्रुव महाराज की कथा देखिए, ध्रुव महाराज ने क्या किया, सबसे पहले किस पर विश्वास किया, माता पर, तो माता प्रथम गुरु होती है बच्चे के लिए, अपनी माता पर विश्वास किया, फिर नारद मुनि पर विश्वास किया, तभी तो हुआ। नारद मुनि ने कहा ये जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस उसी को किया, कोई प्रश्न नहीं किया। और भी कोई मंत्र है क्या, जरा दीजिए देखता हूँ उसमें से कौन से अच्छे होते, चुनता हूँ मैं, नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा 16 माला जप, 4 नियम पालन, आंख बंद करके करना, तो विश्वास होना चाहिए। बहुत अच्छा, किसने कहा था, गुरु पर? हाँ, तो गुरु पर विश्वास होना चाहिए। यस, जप में ध्यान नहीं है वो तो मैंने पढ़ा, आप में क्या होता है उसका अर्थ क्या है जी? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं ना? यस, हम सब के हृदय में भरे हुए हैं विषय, कभी कभी आ जाते हैं उठ के ना, कभी कभी तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हो गया शुद्ध भक्त, बस अब तो कल आएगा वैकुंठ से प्लेन, सारे लोग देखेंगे हमी जातो हमसा गावा हमसा राम राम घ्यावा, हो गया राइट। होता है ना ऐसा? अब लोग जगन्नाथपुरी में थे ना, आपने देखा पंडे थे वहां पर, कल हम लोग थे जब भी परसों मंदिर में अंदर तो एक पंडे ने आके प्रसाद दिया हमें, हम लोग 2 जन थे तो हम लोग को प्रसाद दिया, मना कर रहे थे फिर भी दिया। तो उसे देखकर हमें एक पुराना इंसिडेंट याद आया, आपको सुनाया वैसे हमने कई बार, और एक बार सुनाते, शुद्ध भक्त की बात याद आई। तो हम पहली बार जगन्नाथपुरी आए थे इस्कॉन में आने के बाद, बहुत साल पहले, बहुत पता नहीं कितने हुए, पहली बार आए थे मंदिर कभी देखा नहीं था, पंडो पंडे क्या होते हैं पता नहीं था, क्या सिस्टम है कुछ नहीं पता था। तो उस समय सब भक्त गए थे तो हम लोग भी दर्शन के लिए चले गए, तो ज़्यादा उत्साह होता है ना जब नए नए होते हैं, तो उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें लगा पहले हम चले जाते हैं, पहले हम दर्शन करेंगे तो हम चले गए, बाकी भक्त आ रहे। जैसे मंदिर में प्रवेश किया, थोड़ा आगे गए, दर्शन नहीं हुए थे, पंडा आया एक, हमें नहीं पता था क्या होता है जगन्नाथपुरी में, पंडा आया, हमने सुना था पंडे भगवान की सेवक, भगवान बड़े आदर। तो वो आया और जैसे उसने हमें देखा तो उसने हमें रोका और तुरंत हमारे गले में हार डाल दिया उसने। तो जैसे उसने गले में हार डाला हमें तो लगा हम शुद्ध भक्त हो गए राइट, अरे इतने सारे लोगों में हमें ही चुना उसने, ये तो भगवान की योजना है। तो उसने लाके हार डाला और फिर उसने प्रसाद लिया, स्वीट इतना बड़ा कुछ था, वो मुंह में सीधा मुंह में डाला, मना करे नहीं 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 चाहिए मैं स्वीट नहीं लेता यार, भगवान की इतनी कृपा हो रही है मतलब। और लिटरली हमारे मन में आया कि हो गया शुद्ध भक्त हो गया मैं, नहीं तो और क्या, इतने सारे लोग हैं उनमें से हमें ही उसने चुना, हमें ही हार पहनाया और अब प्रसाद भी खिला रहा है, तो इतना हमारे मन में आ गया कि हो गया निश्चित शुद्ध भक्त। और फिर उसने कहा पैसा निकालो, तो हमने कहा पैसा तो नहीं है, ब्रह्मचारी हैं कुछ लाए नहीं, पैसा नहीं है, नहीं, वो हार निकाल लिया वापस सारी शुद्ध भक्ति चली गई हार निकाल लिया, वो प्रसाद तो अंदर चला गया था, नहीं तो उसका अगर बस चलता तो वो भी खींच के निकाल लेता कि पैसा नहीं है भक्ति करने आया है। तो ऐसे कभी कभी लगता है हम लोगों को कि हम लोग तो शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन पूरा भरा पड़ा है विषयी दुर्जन सदा कामेरत। इसीलिए हमें सोचना चाहिए, ये उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अभी जीवन में निर्णय नहीं लिए हैं। प्रभुपाद कहते थे कि अपना एक जीवन केवल कृष्ण को देना चाहिए, केवल एक जीवन, इतने सारे जीवन। आप जानते हैं आपके पिछले जन्म में कौन माता पिता थे, कितने लोगों को पता, हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, फोन वोन आया कभी उनका, मोबाइल, उससे पिछले जन्म, उसका पिछले जन्म, तभी भी हम ऐसे ही आसक्त रहे होंगे ना, मेरे माता पिता कैसे इन्हें छोड़ सकता हूँ, जीवन अपना उनके लिए। प्रभुपाद कहते थे कई जन्म दे दिए आपने ऐसे माता पिताओं को और बदलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं। आज हो सकता है आपके पिछले जन्म के माता पिता आपके घर में नौकर हों, आप उनको रोज लात मार रहे हों या जो भी हैं, आपको क्या पता कौन है राइट। हम आज इतने आसक्त हैं कि मेरे माता पिता हैं, मेरी मेरी, ये हमारा अहंकार है और कुछ नहीं, हमारी आसक्ति नहीं है माता पिता से, केवल अहंकार है। जैसे रावण को था, शूर्पणखा जब रावण के पास आई, रावण इसलिए क्रोध में नहीं आया था कि शूर्पणखा के नाक काटे, रावण इसलिए क्रोध में आया था कि मेरी बहन के नाक कैसे काटे, इसलिए क्रोध था उसको। तो हमारा भी यही है, मेरे माता पिता, ये हमारा केवल अहंकार है। कितने माता पिता हो चुके हैं, तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे एक जन्म, केवल एक जन्म कृष्ण को दीजिए जो असली माता पिता है, सुधर जाएंगे, सफल हो जाएगा जीवन। लेकिन आज भी हम लोग उसी में पड़े हुए हैं, तो हमें सोचना चाहिए विषय दुर्जन, कितने समय और हम इसको ही चलाते रहे, अगले जन्म में फिर वही, अगले जन्म में फिर वही। इसलिए एक जीवन कृष्ण को देना चाहिए, भूल जाना चाहिए बाकी चीजें, और ऐसा जीवन ये गुणगान करने योग्य होता है। जिन लोगों ने भी अपना पूर्ण जीवन कृष्ण को समर्पित किया है उनका गुणगान होना चाहिए, गुणगान करने योग्य वो लोग हैं। लोग बर्थडे मनाते हैं, आप लोग भी मनाते होंगे ना, बर्थडे मनाते हैं, जोश करते हैं, 20 साल हो गए, 30 साल, क्या आवश्यकता है, मृत्यु के निकट जा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। बर्थडे मनाने का अधिकार केवल भक्तों को है, और वो भी इसलिए कि उन्हें सोचना चाहिए कि एक साल और मैंने कृष्ण की सेवा कर ली, इसका उत्सव मनाना चाहिए। बाकी लोगों को क्या है, मृत्यु के निकट जा रहे हैं, एक साल कम हो गया जीवन से, क्या उत्सव मनाना है। इसीलिए फूंक मार कर बंद करते हैं, 18 साल हो गए, 18 वेस्ट हो गए, वही वही सिग्नल है ना, इसीलिए तो फूंक मारकर बंद करते हैं कि साल गया, दिया कब बुझाया जाता है व्यक्ति की मृत्यु पर है ना, इसलिए वो लोग 18 पे फूंक मारते, 18 बार मर गया, अभी और बस इतना ही बाकी है, फिर इतना ही। लेकिन भक्तों को मनाना चाहिए, तो इसीलिए आप सबसे हमारी विनती है कि अपने अपने जीवन में जिन भी विषयों के प्रति हम लोग आसक्त हैं, हो सकता है कोई स्त्री के प्रति आसक्त है, कोई धन के प्रति आसक्त है, कोई मान सम्मान के प्रति आसक्त है, सब में कुछ ना कुछ हो सकता है, यही सब है विषय, रूप गंध स्पर्श। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो आनंद जिसको हम सोच रहे हैं, जिसका आदि है और जिसका अंत है, आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा, यही संस्पर्श जहा भोगा, ये संस्पर्श से उत्पन्न होने वाला भोग। किसी सॉफ्ट चीज को हमने पकड़ा, कोई स्त्री का स्पर्श किया, बड़ा आनंद आ गया, यही संस्पर्श जहा भोगा। दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा, हमारे लिए कोई उसमें आनंद लेने का बात नहीं, क्योंकि एक दिन आदि और अंत है, खत्म हो जाने वाला, तो क्यों उसमें आनंद लेना। तो इसलिए आप में से जो लोग ये निर्णय ले सकते हैं कि अपने जीवन से इस विषयी दुर्जन सदा कामेरत इससे बाहर आने का प्रयास करें, कृष्ण को समर्पण करें, पूर्ण जीवन उनको दें, उनको करना चाहिए, और फिर जो आनंद होगा वो असली आनंद है। ठीक है, विषय दुर्जन, और कोई रह गया, यस एक रह गया, हाँ जप में मन नहीं लगता, ओके और कोई है पीछे, सैफरन टी शर्ट नहीं, इंग्लिश यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़, जप में मन नहीं लगता, ओके राजवीर आखिरी व्यक्ति, नहीं इधर दो तीन और है, हाँ यस, भक्ति और सेवा में तालमेल नहीं बैठता, कैसे,
जप पूरे नहीं होते, लगता है सेवा ज्यादा करना अच्छा
रहेगा, क्योंकि आप जप को सेवा नहीं मानते। भक्ति और सेवा में कोई अंतर नहीं है, ये दो अलग चीजें नहीं है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने जहां भी भक्ति की अनुवाद किया है वो लिखते हैं डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस इन भक्तिमय सेवा। सो भक्ति और सेवा में कोई अंतर नहीं है, अगर आप जप कर रहे हैं वो भी सेवा है, केवल हमें वो सबसे अच्छी सेवा है, सारी सेवा में अच्छी सेवा, तो तालमेल हमें बिठाना चाहिए भक्ति में, ताकि हमारे सारी चीज़ें पूरी हो सकें। इसका एक सबसे सरल उपाय है गुरु की आज्ञा का पालन करना, अथॉरिटीज़ का पालन करना, सारा तालमेल बैठ जाए। हम अपने मन में बीच में करने लगते हैं तब डिस्टर्बेंस आती है, जहाँ केवल गुरु, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त करिया क्या आरण करी हम अने आशा, जब ये होता है तक कोई भ्रांति नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जहां हम अपने मन से करने का प्रयास करते हैं तब कन्फ्यूजन होता है। बहुत अच्छे, बुद्ध सिंह को कुछ कहना चाहेंगे? उनके कोई इच्छा ही नहीं है इसलिए मैं डर लग रहा है उनसे पूछने के लिए। कोई कम ओ सॉरी आप रह गए। यस प्रभु, सहनशीलता की कमी है। क्यों बोल रहे हैं पता है? टाइम दिखाना चाहते हैं मुझे कितना सहन करूं आप, इसीलिए कहा सहनशीलता की कमी है प्रभु, कुछ कीजिए। देख लिया मैंने सहनशीलता। यस, हमें बहुत कुछ सहन करना चाहिए। आप जानते किस तरह से क्या क्या सहन करना चाहिए? भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुख और दुख दोनों को सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, दोनों को सहन करना सीखो। सहनशीलता बहुत आवश्यक है। एक सहनशीलता होती है जहां हम वेगों को सहन करना सीखते हैं, वेग सहिष्णुता कहते हैं उसे। बहुत से वेग आते, वेग जानते हो आप लोग? वेग समझते हो? वाच्यो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। वेग यानी अर्ज, मैंने ट्रांसलेशन नहीं पूछा। वेग यानी बहुत सारा तेजी से कुछ आता है, उसको रोक नहीं पाते, है ना? जैसे एक नदी का बहाव होता है ना, बहुत तेज आता है, पत्थरों को अगर पर दीवार बनी है तोड़ता हुआ निकल जाता है, उसको वेग कहते हैं। तो हमारे अंदर बहुत से वेग होते हैं ना, कभी कभी काम वासना बहुत तीव्र हो जाती है, फिर सब कोई व्यक्ति गलत काम कर बैठता है, कभी भूख बहुत तेज हो जाती है, राइट? ये भी एक वेग है ना, उदर वेगम। तो फिर आप कुछ भी सुनाओ, कथा सुनाओ, कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, जो भी हो, कुछ अंदर नहीं जाता, भूखे पेट भजन भय न गोपाल। तो ये सारे वेग हैं। तो एक वेगों को सहन करना सीखना चाहिए, वेग सहिष्णुता। और एक सहिष्णुता है बहुत महत्वपूर्ण सहनशीलता, परोत्कर्ष सहन सहिष्णुता। परोत्कर्ष यानि जब दूसरा आगे बढ़ रहा हो उसको सहन करना वो सहन नहीं होता हम लोगों से, है ना? देखो, अगर हमारे साथ का कोई भक्त है, हमारे साथ ज्वाइन किया, फिर अचानक बहुत अच्छा प्रवचन करने लग गया, फिर अच्छा भक्त हो गया, बढ़ रहा आगे। एक बार दो मित्र, तीन मित्र थे, उनमें से एक मित्र ने आकर कहा कि पता है वो जो अपना मित्र था ना, वो जज हो गया। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने खुद देखा है वो जज हो गया। नहीं मैं मानते। अरे मैंने देखा वो बैठकर जजमेंट वहां पर निर्णय दे रहा है, जज हो गया वो। अच्छा फिर उसको पगार नहीं मिलती होगी मतलब कुछ ना कुछ ढूंढना, स्वीकार नहीं। तो ऐसे हम लोगों के भी है कि परोत्कर्ष, अगर कोई बढ़ रहा है आगे तो हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सहनशीलता है हमारे लिए, वेग सहिष्णुता, परमत्त सहिष्णुता और परोत्कर्ष सहिष्णुता। परमत्त यानी दूसरे के विचार, उसको सुनना। यानी भी प्रभु जी के अंदर बहुत सहनशीलता है, पिछले एक डेढ़ घंटे से सुन रहे हैं तो इसलिए। यस, मन चंचल है, स्थिरता नहीं है। देवेश कोई कमी है आपके अंदर कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुकिंग करने में आलस आता है? हाँ, सुबह उठने में। यू हैव एनी फॉल्ट्स इन यू और यू आर फुल कंप्लीट परफेक्ट? हाँ, लैक ऑफ सर्विस एटीट्यूड। विच एटीट्यूड? प्रॉपर एटीट्यूड। ओके, सही भाव नहीं है सेवा करने का या लोगों से रिलेशन बनाने का। तो देखिए ये कमियां हैं। अभी एक लाइन का प्रवचन हुआ, अभी आगे का पूरा प्रवचन, अभी प्रवचन शुरू होगा। अभी तो ये आप लोग हंस के रहे, अभी प्रवचन शुरू होगा। सहनशीलता, अच्छा ओके, इसको आगे करेंगे। बहुत अच्छा है ये भजन, तो इसको भी अभी नहीं, अभी भूख लग रही है। सहनशीलता की ज्यादा आपकी परीक्षा नहीं करेंगे। तो अभी इस तरह से हमारा ये अभी हमने सोचा था पूरा भजन पे चर्चा करेंगे, हुआ नहीं, शाम को करेंगे। लेकिन मूल बात इससे यही है कि हमारा हृदय विषयों से भरा हुआ है, विषय दुर्जन सदा कामेरत किछु नाही मोरा गुण। तो सबसे पहले हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी जो कमियां हैं, बहुत अच्छा होता है, फिर हमारा इलाज प्रारंभ हो सकता है। उसका इलाज भी दिया है आगे। तो पहली चीज़ कमियां स्वीकार कीजिए, फिर आगे कैसे उसका इलाज होना है उसको हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। तो भक्ति के मार्ग में हमने बताया कि तीन गुण कौन कौन से तीन गुण हैं वैष्णवों के, निर्भयता, नम्रता, निस्वार्थ भावना। तो निर्भयता होनी चाहिए अपनी कमियों को स्वीकार करने में, जैसे आप सब ने किया। निस्वार्थ भावना हमेशा दूसरों के लिए करना सीखना चाहिए। और नम्रता, जैसे आप सब में है ही, आप सब बहुत नम्र हो, तो इस पर भी चर्चा बाद में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी हम लोग एक ऐसे मंत्र का पाठ करेंगे जिसका फल तुरंत मिल जाता है, हम सबको पता है। तो अभी आप लोग प्रसाद लीजिए, जिनका जप वगैरह नहीं हुआ जप कीजिए, फिर 5 बजे करीब हम लोग समाधि पर जाएंगे। अभी तो वातावरण ठीक हो गया, 4:30 जा सकते हैं। आप लोगों ने रेस्ट किया सुबह से, सबका हो गया, बहुत अच्छा। तो फिर 4:30 बजे माधवेंद्रपुरी की समाधि पर जाएंगे और फिर शाम को हाँ दर्शन करेंगे। अगर माधवेंद्रपुरी की समाधि पर समय हुआ तो वहाँ पर थोड़ा बहुत और उनकी कथा, महाराज सुबह बता चुके हैं, थोड़ा बहुत और उनकी कथा वहाँ पे करेंगे और फिर शाम को दर्शन करेंगे गोपीनाथ जी के। और कल हम लोग कंटिन्यूस कीर्तन करने वाले हैं, अर्थात हाँ हाँ करीब 6 से 7 घंटा कंटिन्यूस कीर्तन होगा। और उसमें हम चाहते हैं कि अलग अलग भक्त कीर्तन करें, एक ही भक्त नहीं। तो आप सब अपने नाम जो आप गा सकते हैं, महामंत्र गाना और कुछ नहीं, लेकिन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। तो पहले आधा घंटा एक भक्त गाएंगे, फिर दूसरे आधा घंटा, फिर तीसरे आधा घंटा, ऐसे कम से कम 12 से 14 भक्तों की आवश्यकता है जो आधा आधा घंटा केवल कीर्तन करें। अलग अलग ट्यून्स में कर सकते हैं, आप अपनी कला का प्रदर्शन करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कृपया अपने नाम आप सब राजनारायण प्रभु को दीजिए। 14 भक्तों के नाम चाहिए जो आधा आधा घंटा कीर्तन करेंगे, फिर उनका शेड्यूल बनेगा, पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा। तो कल हम लोग ये कीर्तन करेंगे कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ हम आए हैं, जितने महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने बहुत कीर्तन किया था, यहाँ युग धर्म है तो इसको करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शाम को थोड़े भजन स्लाइड्स पे गाएंगे, अगर व्यवस्था हुई तो स्लाइड्स होंगी और फिर भजन हम लोग गा सकेंगे, अगर प्रोजेक्टर लगाने की व्यवस्था यहाँ हो सकी तो, ठीक है। हरे कृष्णा। तभी आप सब प्रसाद के लिए प्रस्थान कीजिए, जो प्रसाद सर्विंग के लिए भक्त हैं कृपया जाके व्यवस्था कर लें और बाकी सब प्रसादम के लिए प्रस्थान करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।
यही है बात।